ഹന്താണം നമോ സിദ്ധാണം നമോ ആര്യാണം നമോ വജ്രായാണം നമോ ലോയേ സർവസാഹുനം ഏഷോ പഞ്ചമോയാരോ സർവപാവപ്രനാശനോ മംഗളാണം ച സർവേഷം പരമമോ മംഗളം മോക്ഷമാർഗസ്യ നേതാരം ഭേതാരം കർമ്മ ഭൂവ്രതാം യാതാരം വിശ്വതത്വാനാം വന്ദേ തദ്ഗുണലബ്ധൈ വന്ദേ തദ്ഗുണലബ്ധൈ വന്ദേ തദ്ഗുണലബ്ധൈ സത്വാർ സൂത്ര മഹാശാസ്ത്ര കെ ആധാർ സെ യഹാ ഹംനെ പഹലേ അധ്യായ കോ संपन्न करने का संकल्प पहले दिन से लिया था और आज वो संपन्न होने जा रहा है। सत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ में जिनागम के सभी विषयों का समावेश है। पूरे जिनागम में ऐसा कोई विषय नहीं है जिस विषय के बीज हमें इस सत्वार सूत्र में ना मिले। सब कुछ मिलेगा इसमें, बस आवश्यकता है इसे शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ने की। एक बार प्रारंभ से लेकर अंत तक हम सत्वार सूत्र को पढ़ें तो सही, तो हमें पता लगेगा कि आखिर इस सत्वार सूत्र में किस बात का वर्णन किया गया है। वैसे तो इस सत्वार सूत्र महाशास्त्र में 7 तत्वों का वर्णन है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे अनगिनती विषय इसमें आ गए हैं। यहाँ जो प्रकरण अपना चल रहा है, इस प्रकरण में हम 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान आत्मा का एक गुण है, माने ज्ञान हमारा एक गुण है, माने ज्ञान हमारी एक क्वालिटी है। हमारी उस ज्ञान वाली क्वालिटी में कितनी सामर्थ्य है, कितनी पावर है, कितनी योग्यता है, हम अपने ज्ञान के माध्यम से कितना जान सकते हैं, इसका हमें ही नहीं पता। हमें अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का ज्ञान नहीं है, इसका मतलब अपनी शक्तियों का पता नहीं। हमें मालूम नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में क्या है। तो यहाँ 5 प्रकार के ज्ञान में से एक मति ज्ञान बतलाया, एक श्रुत ज्ञान बतलाया, मति ज्ञान के 336 वेद बतलाए। उम्मीद करता हूँ आपको 336 नहीं तो इतना तो याद होगा कि 336 होते हैं, इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। 336 भी यदि याद हो तो कोई बड़े आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि अवग्रह ईहा आवाय धारणा 4, स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण और मन ये 6, और 12 विषय बहु बहुविध क्षिप्र अनुसृत अनुक्त ध्रुव 6 इनके उल्टे ये 12 विषय, और इन सबको मल्टीप्लाई करो तो टोटल पदार्थों के अवग्रह ये हवाई धारणा के आधार पर वेद बनते हैं 288। और उसमें 48 और अपन ने जोड़े थे, क्योंकि व्यंजन अवग्रह है, उन व्यंजनों का सिर्फ अवग्रह ही होता है। इन 12 प्रकार के पदार्थों में सिर्फ अवग्रह ही होगा, और वो चक्षु और मन से नहीं होता, 4 इंद्रिय से होता है। तो 12 पदार्थों का अवग्रह स्पर्शन से, रसना से, घ्राण से और कर्ण से, ठीक है। तो इस तरह से 48 भेद व्यंजन अवग्रह की अपेक्षा से बनते हैं 288 और 48, इस तरह से 336 भेद मति ज्ञान के हो जाते हैं। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, कल हमारी चर्चा हुई है। श्रुत ज्ञान श्रुतम मति पूर्वम ये सूत्र दिया गया था। आप सूत्र यदि याद रखेंगे तो इसका मतलब है साक्षात उमा स्वामी आचार्य आपके हृदय में बैठे हैं, आपके जवान पर बैठे हैं। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक है। उसके पहले 2 भेद हैं मनोज भाई, कौन कौन से? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, 2 भेद हैं श्रुत ज्ञान के, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य के अनेक भेद हैं, अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं, ठीक है। श्रुत ज्ञान जो मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसमें इंद्रियों का व्यापार नहीं होता, लेकिन इंद्रियों के बाद जो काम किया जाता है वो श्रुति ज्ञान का काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के बाद अब नंबर आता है अवधि ज्ञान का। अवधि ज्ञान भी दो प्रकार का कहा गया मूल में, एक भाव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। मुकुंद भाई, ये आप लोगों को याद रखनी है ये सब बातें, हमारे जगह जगह काम आएगी, क्योंकि मैंने बताया ना ये तो सूत्र ग्रंथ है, सूची है, ये तो इंडेक्स है, ये तो फंडामेंटल की बातें हैं, ये तो बस छोटी छोटी सी बातें। अब ये बातें यदि जब आप पढ़ेंगे, तो आप जब मूल ग्रंथ पढ़ेंगे, दूसरे विषय पढ़ेंगे, किसी के प्रज्ञाख्यान सुनेंगे, तो शब्द आया अवधि ज्ञान, का देवों और नारकियों के एक अवधि ज्ञान होता है, तो ध्यान में आना चाहिए कौन सा वाला। प्रकाश भाई, कौन सा होता है अवधि ज्ञान देव नारकियों के? भाव प्रत्यय। भाव प्रत्यय अधिर देव नारका नाम, ये सूत्र था। भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देवों और नारकियों के होता है। ठीक है, दूसरा अवधि ज्ञान कहा था क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला गुण प्रत्यय, उसके छह भेद कहे थे गुण प्रत्यय के, हीयमान, वर्धमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अनुगामी, छह भेद थे। अलग अलग प्रकार की स्थितियां बनती है उसमें क्षयोपशम के निमित्त से होने के कारण। चलो और आगे बढ़ते हैं, मन पर्यय ज्ञान। मन पर्यय ज्ञान मन के निमित्त से होता है, दूसरे के मन की बात को जान लेता है, उसका नाम मन पर्यय ज्ञान है। ये चमत्कारिक ज्ञान नहीं है क्या? आपके मन में क्या चल रहा है ये मुझे पता लग जाए, ये चमत्कारिक ज्ञान नहीं है क्या? सामने चेहरा देख करके तो कोई भी पहचान लेता है तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, मैं तो समझ रहा हूँ, बोलते हैं ना बोल चाल की भाषा में, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं सब समझ रहा हूँ। लेकिन भाई चेहरा नहीं दिखे, कहीं दूर हो, तो आप पहचान सकते हैं उसके मन में क्या चल रहा है? ये मन पर्यय ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है। ये एक रिद्धि है, चमत्कार है, ज्ञान का चमत्कार है, क्षयोपशम है। ठीक है, ये अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान, इन दोनों ज्ञानों में क्या अंतर है, उस अंतर की भी चर्चा हुई। पहले मन पर्यय ज्ञान के दो भेद बतलाए, ऋजु और विपुल। ऋजुमति और विपुलमति, क्या फर्क है इन दोनों में, ऋजुमति और विपुलमति में? ऋजुमति नाम का जो मन पर्यय ज्ञान है, वो सामने वाले के मन में जो सीधी सीधी, जिसका मन सच्चा है, सीधा सीधा मन है किसी का, उनकी बातों को जानेगा, वो ऋजुमति मन पर्यय ज्ञान वाला है। और विपुलमति मन पर्यय ज्ञान वाला कैसा होगा? वो आड़ी टेढ़ी बातें चल रही हो ना, गूढ़ बातें किसी के मन में, उसको भी जान लेगा, वो विपुल मति मन पर्यय ज्ञान है। इन दोनों में अंतर भी बतलाए, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद्विशेष, विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा से अंतर है। ऋजुमति की विशुद्धि कम है, विपुल मति की विशुद्धि ज्यादा है, बहुत है। ऋजुमति मन पर्यय ज्ञान होने के बाद में छूट भी सकता है, नित्यात्म में भी आ सकता है वो व्यक्ति, संसार परिभ्रमण भी कर सकता है, अर्ध पुद्गल परावर्तन उसका काल शेष बचा हुआ हो सकता है ऋजुमति वाले का। विपुलमति वाले का छूटेगा नहीं, वो केवल ज्ञान ही लेगा, भगवान ही बनेगा वो तो, और कुछ नहीं। देखिए मन पर्यय ज्ञान होता है मुनिराजों को, इसका मतलब मन पर्यय ज्ञान वाले चाहे ऋजु वाले हो चाहे विपुलमति हो, है तो भावलिंगी संत, लेकिन ऋजुमति वाले भावलिंगी संत अवस्था छूट सकती है, दुनिया में भटक सकते हैं। और विपुलमति वाले बोले अब ये मुनि अवस्था से श्रेणी चढ़ना शुरू करेंगे, अभी थोड़ी देर में श्रेणी चढ़ेंगे, आठवां, नौवां, दसवां, बारहवां, केवल ज्ञान, अनंत दशा, प्रसिद्ध दशा, सिद्धालय में जाकर के बैठेंगे वो, माने केवल ज्ञानी हो जाएंगे। ये जो चमत्कार है, ये चमत्कार विपुलमति मने पर ये ज्ञान का है। शिष्य ने प्रश्न किया, आपने ऋजुमति और विपुलमति का अंतर तो बतलाया, कृपया ये भी बतला दीजिए अवधि और मने पर ये में क्या अंतर है, वो तो बताया ही नहीं आपने। तो चार पांच अंतर बतलाए अवधि ज्ञान और मने पर्यय ज्ञान में, क्या क्या अंतर बतलाए? विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, विषय, व्योवधि, मने पर्यय, ऐसा एक सूत्र दिया था। विशुद्धि की अपेक्षा से अंतर है, किसकी विशुद्धि ज्यादा? अवधि और मने पर्याय में, मने पर्याय की क्षेत्र किसका ज्यादा? क्षेत्र में उल्टा है। देखो लगता है ऐसा है अपने को मने पर्याय विशेष होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्षेत्र अवधि ज्ञान का ज्यादा है। अवधि ज्ञान तीन लोक की बातों को जान सकता है भाई साहब, तीनों लोकों की बातों को जान ले, ऐसा होता है अवधि ज्ञान। लेकिन मने पर्याय ज्ञान मात्र मनुष्य लोक की बात को जानेगा, मात्र ढाई द्वीप की बातों को जान पाएगा। ढाई द्वीप से बाहर की बात को मने पर्याय ज्ञानी नहीं जान सकता। ठीक है, क्षेत्र की अपेक्षा से अंतर हो गया। स्वामी की अपेक्षा से भी अंतर है। अवधि ज्ञान के स्वामी चारों गतियों में है। ठीक है, अवधि ज्ञान कौन सी गति में हो सकता है? चारों गतियों में। और मने पर्याय ज्ञान कौन सी गति में होगा? मनुष्य में। मनुष्य में भी ढाई द्वीप में, ढाई द्वीप में भी सभी मनुष्यों को नहीं, आर्यखंड वालों को। आर्यखंड में भी कौन? मुनिराजों को। मुनिराजों में भी सभी मुनिराज को नहीं। मने पर्याय नाम की रिद्धि जिनको है उनको, बहुत तरह की रिद्धियां हैं, उन रिद्धियों में एक मने पर्याय नाम की रिद्धि है। तो जिनके जीवन में मने पर्याय नाम की रिद्धि होगी उनको होगा। ठीक है, विषय हो गया, स्वामी हो गए, स्वामी हो गया विषय। विषय की अपेक्षा से अंतर, विषय की अपेक्षा से अवधि और मने पर्याय में क्या अंतर है? तो अभी जो विषय की अपेक्षा से अंतर है ना, उसको अपन नीचे पढ़ रहे हैं, वो नीचे के सूत्रों में। पहले मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय बतलाएंगे, फिर अवधि ज्ञान का विषय बतलाएंगे, फिर मने पर्याय का विषय बतलाएंगे, फिर केवल ज्ञान का विषय बतलाएंगे। देखो सूत्र नंबर 26-27, मति श्रुति और निबंधो, मति श्रुति और निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु, मति श्रुति और निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु। क्या नीचे थोड़ा सा फर्क है इसमें? वो 6 नंबर पर दिया है नीचे, निबंध शब्द का प्रयोग किया है, निबंध शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मति श्रुति और निबंधो, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का निबंध माने संबंध, मति और श्रुति का संबंध। द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, सारे द्रव्यों के साथ में होता है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान सब द्रव्यों को जानते हैं भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप। मति श्रुति ज्ञान जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल 6 द्रव्यों को जानते हैं, हम जान सकते हैं 6 द्रव्यों को जान सकते हैं हम मति और श्रुति ज्ञान के माध्यम से। ये है हमारे पास में सामर्थ्य। हाँ कहूंगे साहब धर्म द्रव्य कैसे जानने में आएगा, अधर्म द्रव्य को कहाँ जानते हैं हम, आकाश को कहाँ जानते हैं, काल को कहाँ जानते हैं, धर्म अधर्म आकाश काल तो नहीं जानने में आते हमारे माध्यम से? कि नहीं, आप जान सकते हैं, आप में है ताकत धर्म अधर्म आकाश काल को जानने की। कैसे जान सकते हैं? अनुमान से जानेंगे, युक्ति से जानेंगे, शास्त्र से जानेंगे, तर्क से जानेंगे। आप समझ रहे हैं? युक्ति से, तर्क से, न्याय से, अनुमान से, इन सब बातों से जानने में आता है। शास्त्र के आधार से जानते हैं, धर्म द्रव्य की सिद्धि होती है। धर्म द्रव्य जानते हैं किसे कहते हैं, अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है धर्म अधर्म द्रव्य की, क्या पहचानते हैं प्रकाश भाई? धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं भाई?
एक गति वाला गुटा होगा जीव को, दोनों को गति में सहाय करे,
जो गति में सहाय करे वो धर्म द्रव्य, जो रुकने में सहाय करे वो अधर्म द्रव्य। तो आप जान रहे हैं इस बात को, आपको पता है गति में सहयोग करे उसका नाम धर्म द्रव्य है। ये आपके ज्ञान का विषय बन रहा है, वो दिखता नहीं है आंखों से, अमूर्तिक है वो, अलग मैटर है। अमूर्तिक होना अलग बात है, लेकिन अमूर्तिक होते हुए भी, अमूर्तिक होने के बावजूद भी हम अपने मति श्रुति ज्ञान के माध्यम से शास्त्र आधार से उनको जान सकते हैं। धर्म अधर्म जानने में आ रहा है, तर्क से सिद्धि होती है, न्याय से सिद्धि होती है। अभी उसकी चर्चा विस्तार से नहीं करना चाहता हूं मैं, समय का इतना अवकाश नहीं है अपने पास में। अवसर मिलेगा तो मैं धर्म अधर्म द्रव्यों की सिद्धि भी करूंगा कभी, तो शायद मैंने ये बालबोध के प्रवचनों में की है कहीं धर्म द्रव्य की सिद्धि। चलिए क्या कहा यहाँ, द्रव्येषु सब द्रव्यों को जानते हैं मति श्रुति ज्ञान, सूत्र नंबर 27 अर्थ कर रहे हैं हम। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का संबंध सब द्रव्यों के साथ में है। द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु, द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु, सर्व नहीं है आ निकलेगा वहां से, जब संधि विच्छेद करेंगे तो द्रव्येषु और असर्व पर्यायेषु ऐसा अर्थ निकलता है। क्या मतलब नहीं समझ में आया, देखो मतिज्ञान और श्रुतिज्ञान सब द्रव्यों को तो जानते हैं, जीव को भी जानते हैं, पुद्गल को भी जानते हैं, लेकिन सब पर्यायों को नहीं जानते, समझ रहे हैं आप? क्या कहा, सब द्रव्यों को तो जान रहे हैं लेकिन सारी पर्यायों को नहीं जानते। अनादि आनंद सारी पर्याय थोड़ी नहीं जान रहे हैं अपन, सारी पर्याय कहां जानने में आ रही है, हमें तो अपनी ही पर्याय नहीं पता, हमें तो अपना ही परिणमन नहीं मालूम है, जीव के परिणमन, जीव के अनंत गुण, अनंत गुणों का परिणमन सबको कहां जान पा रहे हैं हम। सब द्रव्यों को तो जानते हैं लेकिन सब पर्यायों को नहीं जानते हैं। चलो ये हुआ मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय। अवधि ज्ञान का विषय क्या है, आगे सूत्र दिया रूपेश्व वधे, बोलिए रूपेश्व वधे, रूपेश्व वधे, रूपेश्व वधे, इसको तोड़ते हैं ना दो टुकड़े होंगे इसके, रूपीशु, रूपीशु और अवधे, ऐसा अर्थ होगा रूपीशु अवधे। ये रूपी कौन सा द्रव्य होता है सतीश भाई, रूपी कौन सा द्रव्य है, कौन सा पुद्गल, रूपी द्रव्य जो है वो पुद्गल है, माने पुद्गल मतलब रूपी, पुद्गल मतलब जो दिखाई दे, तो ये कह रहे हैं रूपीशु अवधे, माने अवधि ज्ञान अकेले रूपी को जानता है। लो अवधि ज्ञान चाहिए आपको, पर बड़ा गजब है अवधि ज्ञान, तो अवधि ज्ञान होता है तो यहाँ बैठे बैठे दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है सब पता लग जाएगा हमारे को, कि सुनो दुनिया का ही पता लगेगा या अपने आप का पता नहीं लगेगा, क्योंकि अवधि ज्ञान रूपी को जानता है अरूपी को नहीं जानता, और मैं अरूपी हूँ इसका मतलब अवधि ज्ञान मेरे जानने में काम का नहीं है, अवधि ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं कराता, अवधि ज्ञान से मैं अपने आप को नहीं जान सकता, अवधि ज्ञान से आत्मा को नहीं जाना जा सकता, अवधि ज्ञान से आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, अवधि ज्ञान का विषय नहीं है। इट मीन्स अवधि ज्ञान मेरे किसी काम का नहीं है, क्या करूंगा उस अवधि ज्ञान का, जड़ को जान के क्या करूंगा मैं, ये बताओ। अपने को जानने में काम का हो तब तो मेरे मतलब का है, दुनिया में कौन चाहता है, देखो दुनिया में कौन ऐसे मूर्ख ही लोग होंगे ऐसे जो अपने आप का रिजल्ट नहीं देख करके दूसरों का देखते हो, कौन होता है ऐसा जिससे मैं नहीं दिखूं। भाई साहब उस शादी का एल्बम नहीं देखना चाहता है जिस शादी में खुद नहीं गया हो, क्यों नहीं देखना चाहता है, मेरी तो फोटो ही नहीं होगी, अब कदाचित किसी ने ला करके धरी दिया कि देखो देखो पंडित जी एक बार, तो फिर ऐसे देखता है फटाफट 3 मिनट में पूरा ग्रंथ पड़ जाता है, क्या 3 तो ज्यादा कह दिए मैंने, उससे भी कम में पूरे पेज बदल जाता है। और मान लो कहीं हम हो उसमें, क्या तो फिर पेज बदलते बदलते हम सामने बैठे हैं, इधर से आप पेज बदल रहे हो, किसी जगह पर पेज पर आप रुके तो हमने कहा दिखी आपकी फोटो, इसका मतलब अपने को देखना कितना इम्पोर्टेंट है। देखो मति श्रुति ज्ञान जो हमारे पास में मौजूद है, ये मति श्रुति ज्ञान अपने को जान सकते हैं, बोलो आप, मति श्रुति से मैं आत्मा को जान सकता हूं लेकिन अवधि ज्ञान से मैं आत्मा को नहीं जान सकता, क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय यहाँ उमा स्वामी आचार्य बतला रहे हैं रूपेश्व वधे, रूपी पदार्थों को जानना यह अवधि ज्ञान का काम है। अवधि ज्ञान सिर्फ रूपी माने पुद्गल, पुद्गलों को जानेगा, यहाँ तक कि परमाणु पर्यंत जान लेगा, इतना तो है विशेष ज्ञान। अवधि ज्ञान इतना विशेष तो है, भाषा वर्गणा के परमाणु भी दिख जाएं। भाषा वर्गणा के परमाणु माने शब्द, शब्द में स्पर्श नाम का गुण है या नहीं है? शब्द पुद्गल है सब, शब्द पुद्गल है, ठीक है। अब इन शब्द वाले पुद्गलों में स्पर्श है या नहीं है? होना ही चाहिए, शब्दों में भी स्पर्श है तो रस भी है शब्दों में। मीठे लग रहे हैं आपको है? कड़वे लग रहे हैं, मीठे लग रहे हैं? देखो स्पर्श भी है उनमें, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। ये शब्द टकराते हैं भाई, सब छूते हैं ये शब्द। हम यहाँ से बोल रहे हैं और बोलते बोलते एकदम हमने यदि ऐसे बीच में ले आए तो कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं? बोलो, मेरे बोलने में आपको आवाज सुनाई देने में कुछ फर्क पड़ रहा है? फील कर पा रहे हैं आप इस तरह का कुछ? आवाज कुछ कम ज्यादा हो रही है? इसका मतलब हाथ से वो शब्द टकरा रहे हैं, टच हो रहे हैं वो। हमारे जो बोले गए शब्द हैं, ये शब्द आपके कान से टच होते हैं, इसीलिए तो आवाज तेज होती है। तो हमारे शब्दों से, उस आवाज से, उस ध्वनि के पुद्गल परमाणुओं से कान के पर्दे फट जाते हैं। कैसे फट गए? इसका मतलब आवाज, शब्द, उन शब्दों में ताकत थी, उन शब्दों में पावर थी, वो शब्द टकराते थे, टच होते हैं वो शब्द, ठीक है ना। विस्फोट इतना तेज हुआ बहुत दूर कि हमारे घर की दीवार में दरार पड़ गई। कैसे पड़ गई? वैसे दरार कैसे पड़ गई? विस्फोट तो 1 किलोमीटर दूर हुआ था, आपके घर की दीवार में कैसे दरार पड़ गई? आवाज जो आई ना तेजी से, उसकी जो तरंगें निकली है, वो तरंगें आकर के टकराई और दीवार को डैमेज कर दिया उसने। विस्फोट होता है तो ये उड़ जाते हैं सब। इसका मतलब शब्द क्या है? पुद्गल, उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो अवधि ज्ञानी देख सकते हैं कि नहीं? देख सकता है अवधि ज्ञान से। हाँ, रूपेश्वर वजह पुद्गल पदार्थों को जानना अवधि ज्ञान का काम है। चलो मने पर्याय का प्रयोग बतलाओ। मने पर्याय ज्ञान का काम क्या है? किसको जान सकता है? तो उसका विषय क्या है? तो ये कह रहे हैं, इसका विषय बतला रहे हैं। तदनंत भागे मने पर्ययस्य, क्या कहा? तदनंत भागे मने पर्ययस्य, तत अनंत भागे, क्या कहा? वापस देखो, तदनंत भागे, बोलिए गिरीश भाई, तदनंत भागे मने पर्ययस्य, मने पर्ययस्य। देखो भाई, हमें ये याद है, नीचे जो 7 नंबर पे लिखा है ना, ये मने पर्ययस्य, ऊपर आपके शब्द लिखा है मने पर्यायस्य, और नीचे मने पर्ययस्य। वास्तव में मने पर्याय नहीं है, मने पर्याय ज्ञान है, मने पर्याय। तो मने पर्याय, पर्याय नहीं, मन मन से जो ज्ञान ज्ञान हो, सदनंत भागी। सदनंत भागी क्या कह रहे हैं? मने पर्याय ज्ञान का विषय। बोले अवधि ज्ञान से जिसको जाना था, अवधि ज्ञान जिन बातों को जानता है, जितने सूक्ष्मता में अवधि ज्ञान जानता है, उसके अनंत में भाग यदि सूक्ष्म बात हो तो मने पर्याय ज्ञान जान लेता है। क्या गजब है मने पर्याय ज्ञान की ताकत, सामर्थ्य। हम यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ बैठे बैठे विदेश क्षेत्र में, जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र में नहीं, मुकुंद भाई दास की खंड के पुष्करार्ध के विदेश क्षेत्र में कोई मनुष्य है और उससे हमारा कोई रिलेशन पूर्व का, और उसके मन में अभी क्या चल रहा है, ये मने पर ये ज्ञान के माध्यम से जान ले। ऐसे भी प्रयोग होते हैं मने पर ये ज्ञान से, हमारे बारे में वर्तमान में इस ढाई द्वीप में कौन कौन विचार कर रहा है, उल्टा प्रयोग। एक प्रयोग तो क्या हुआ, व्यक्ति निश्चित करो और फिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसको जानो, एक तो ये प्रयोग हुआ। क्या व्यक्ति डिसाइड किया कि उनके मन में क्या चल रहा है, दिनेश भाई के मन में क्या चल रहा है, तो दिनेश भाई ये नक्की किया, फिर इनके मन में क्या चल रहा है। अब दूसरी चीज, हमने विषय नक्की किया और कहा ये विषय किसके मन में चल रहा है, उल्टा हो गया ना। हमने कहा इस समय सिमंदर भगवान के बारे में कौन कौन विचार कर रहा है एट प्रेजेंट में, तो ढाई द्वीप में जो जो व्यक्ति सिमंदर भगवान के बारे में चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे, उन सब के मन की बात मने पर ये ज्ञानी के ज्ञान में आ जाएगी। ऐसा चमत्कारी ज्ञान है मने पर ये ज्ञान, बहुत बड़ी चीज भाई साहब। अच्छा मने पर ये ज्ञान जो होता है मुकुंद भाई, ये मने पर ये ज्ञान मुनिराजों को ही क्यों होता है, मुनिराजों को ही क्यों होता है, गृहस्थों को क्यों नहीं होता? कि गृहस्थों की लाइफ में पहले ही कम कलह है क्या भाई साहब? ये जो थोड़ी बहुत शांति है ना लाइफ में, वो इस वजह से है क्योंकि हमें आपके मन की बात पता नहीं है। हमें यदि इस बात का पता लग जाए कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोगों के दिलो दिमाग में कितनी मायाचारी है, कितना छल कपट है, कितनी बेईमानी है, कितने राग द्वेष है, कितनी तरह की बातें, बोलो लोगों के दिलो दिमाग में कितने तरह राग द्वेष मन मुटाव और कशाने भरी हुई है, पता लग जाए हमारे बारे में कौन बुरा सोच रहा है तो फिर क्या होगा, झगड़े नहीं होंगे आपस में? होंगे झगड़े। तो कहा ये झगड़े तो नहीं होवे, या दूसरों के मन की कलुषता को देख करके भी विवाद और झगड़ा न करें, इतनी पात्रता पहले आपके हृदय में डेवलप होनी चाहिए। और वो पात्रता डेवलप होती है तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में मुनिराजों की लाइफ में। उन्हें पता लग जाए कि ये मेरे को जान से मार देने की प्लानिंग कर रहा है, उसके बावजूद भी वितराग भाव से शांत बैठे रह सकते हैं, कोई बात नहीं। देखो आप क्या है चमत्कार, क्यों नहीं होता है पहले मने पर यह ज्ञान? पहले हो जाएगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी सारी सृष्टि में, गड़बड़ हुए बिना नहीं रहेगी भाई साहब, अनर्थ हो जाएगा। प्रकृति में सब जगह न्याय है, अन्याय कहीं नहीं है। जो जिस ज्ञान को झेल सके वो ज्ञान उसके पास में हो सकता है। आप मने पर यह ज्ञान को झेलने की ताकत नहीं रखते हो, इसलिए आपके हृदय में मने पर यह ज्ञान हो नहीं सकता है। शब्द से याद हो गया मने पर यह कौन सा है, क्या है मने पर यह, मतलब हो गया ना सदनंत भाग्य मने पर यह अस्त्य। आगे बढ़ो 30 नंबर का सूत्र, सूत्र नंबर सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। अरे बड़ी गजब की बात कह दी है इसमें, सब द्रव्य उनके सब गुण उनकी सब पर्यायें उनकी सारी अवस्थाएं केवलस्य, केवल ज्ञान का विषय है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। केवली भगवान शरणाला में कहते हैं प्रकाश भाई, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवान। एक समय में प्रकट जानते हैं, बोलो किनको होता है वो केवल ज्ञान? बोले जो वितरागी होते हैं। जब तक वितरागी नहीं होंगे तब तक केवल ज्ञान नहीं हो सकता। मनोज भाई आपको नहीं। आपको केवल ज्ञान चाहिए? तो मुस्कुराते हैं बस, बोलते कुछ नहीं। अब इनकी मुस्कुराहट में क्या राज छिपा है तो मने पर ये ज्ञानी जाने। सबको चाहिए केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान के लिए शर्त क्या है? बोले वितरागी। वितरागी जो होते हैं वे केवल ज्ञानी होते हैं। जो वितरागी नहीं होंगे उनको केवल ज्ञान नहीं होगा। और वितरागी जानते हैं आप किसे कहते हैं? अरे मैं वितरागी बतलाता हूँ आपको, वितरागी क्या होता है। वितरागी हो और फिर केवल ज्ञान हो, इसका मतलब ये जाने सबको लेकिन विकल्प किसी के बारे में खड़ा नहीं हो। समझ रहे हैं आप ये क्या चीज है? सबको जान करके भी सबसे अप्रभावित रहने की कला, उसका नाम है वितरागता पूर्वक सर्वज्ञता। सबको जानकर अप्रभावित। वितरागी का मतलब जानते हैं आप, हमें कोई कुछ भी कहे समता भाव है, इसका नाम है वितरागी। कोई व्यक्ति कुछ भी कहे उससे हमें राग नहीं है, कोई व्यक्ति कितना भी बुरा कहे उससे हमें द्वेष नहीं है, ये वितरागता है। वितरागी के बिना सर्वज्ञ नहीं हो सकते आप। आप क्या वितरागी बनेंगे, आप तो बात बात पर राग द्वेष खड़े करते हैं, इसने ऐसा क्यों कह दिया, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं, मैं सुन नहीं सकता, मैं क्यों सुनूं। देखो आप, हर व्यक्ति में अहम भरा है, अहम भाव, हर व्यक्ति में अहम भाव है। और जब तक ये अहम भाव है, जैसे मैं श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं मान, ये मान है, जब तक मान रहेगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, और मान गया और मोक्ष तुम्हारी हथेली में। इस मनुष्य जीवन में यदि मान न होता तो मोक्ष ये होता आपके पास में, मोक्ष होता, मोह के क्षय का नाम मोक्ष है। तो वितरागी होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिस कीजिए। कल हमने कही थी बात, सुबह कही थी प्रैक्टिस, सुबह कही थी प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करना है, सर्वज्ञता चाहिए ना आपको, तो वितरागी बनने की प्रैक्टिस करो। वितरागी बनने की प्रैक्टिस कैसे होती है, वितरागी बनने की प्रैक्टिस ऐसे होती है, सब्जी में नमक कम गिरा है तो कोई बात नहीं, शांत भाव से खा लो। वितरागी बनने की प्रैक्टिस कर रहे, खाना बहुत अच्छा बना है, हमारे मन माफिक काम हो गया है तो ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, वितराग भाव से। बच्चों ने घर में कुछ खटपट की है तो कोई बात नहीं, आपका आईफोन लेकर के खेल रहे थे, हाथ के नीचे छूट गया और धड़ाम टुकड़े हो गए उसके, कोई बात नहीं, वितराग भाव से जान लो। आप समझ रहे हैं वितराग भाव क्या चीज है। हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति को देख करके जब आप उससे अप्रभावित रहने की कला हासिल कर लेंगे तो ये केवल ज्ञान ये कहता है अब मैं तेरे चरणों में आकर के पढ़ूंगा, क्योंकि तेरे में ये लायकात प्रकट हो गई है कि तू लोकालोक की समस्त बातों को जाने फिर भी उससे अप्रभावित रहे। बोलो क्या गजब है ये, केवल ज्ञान मुफ्त में नहीं मिलता है, कीमत चुकानी पड़ती है। केवल ज्ञान तो सबको चाहिए, वितरागी किसी को नहीं होना है। जब हम वितरागी के बाद में केवल ज्ञान की बात करते हैं तो पता है क्या कहते हैं, अरे फिर क्या करेंगे केवल ज्ञान का, फिर केवल ज्ञान हमारे किस काम का। केवल ज्ञान तो तब चाहिए जब मैं केवल ज्ञान हो जाने पर दिनेश भाई आपको आपका फ्यूचर बता सकूं, फिर तो आप कहोगे यार गजब है यार। तो जब मैं किसी को कुछ बता ही नहीं सकता, जब मेरे हृदय में किसी के प्रति राग ही नहीं है, किसी को कुछ बताने का, किसी से कुछ जानने का, किसी से कुछ लेने देने का, जब कोई राग भाव नहीं है मेरे हृदय में, तो मैं क्या करूंगा ऐसे केवल ज्ञान का कि भैया ऐसे निष्प्रही जीवों के जीवन में ही केवल ज्ञान आता है। चक्रवर्ती की संपदा भी उन्हें ही प्राप्त होती है जिन्हें चक्रवर्ती के भोग भोगने की लालसा नहीं होती, छह खंड की विभूति को भोगने के आकर्षण जिनके हृदय में नहीं होता है उन्हें छह खंड की विभूति मिलती है। सच है, स्वरूप ही इसी प्रकार का है, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सबको जाने केवल ज्ञान, क्या क्या छिपा होगा केवल ज्ञान से। केवल ज्ञान पे भरोसा हो तो पाप नहीं कर सकता, भरोसा है केवल ज्ञान से। केवल ज्ञान किसको है, कौन कौन है भाई केवल ज्ञानी, कौन कौन है केवल ज्ञानी। आप लोग ऐसे चुपचाप बैठे हो जैसे आप लोगों में से पूछ रहा हूं, सर अरंत और सिद्ध तीसरी सी बात आते इससे सीरियस क्यों। मैंने पूछा कौन कौन है केवल ज्ञानी, तो देखने लगे यार कौन है केवल ज्ञानी, हमारे में से भी है क्या भाई केवल ज्ञानी, आपके हमारे में केवल ज्ञान की कहां बात। अरंत और सिद्ध भगवान केवल ज्ञानी है ना, अरंत भगवान कितने हैं, संख्या कितनी है अरंतों की, लाखों में, लाखों में नहीं, लाखों में है। तीर्थंकर परमात्मा भी से विद्यमान, सीमंदर आदि विजय क्षेत्र में मौजूद है, सब अरंत है, और भी है अरंत, लाखों की संख्या है। सिद्ध भगवान कितने, सिद्ध भगवान अनंत है, ठीक है, मतलब अरहंत और सिद्ध भगवान कितने हैं, अनंत हैं। अच्छा वे सब सर्वज्ञ हैं, वे सब केवल ज्ञानी है। अच्छा इसका मतलब ये है वो सब कुछ जान रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ यदि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो अनंत सिद्ध भगवान मुझे जान रहे हैं, वो देख रहे हैं। जब हम गलत काम करते हैं, छिप करके कोई गलत काम करना चाहते हैं, हमारे मन में ये बात आती है कोई नहीं देख रहा है, किसी को क्या पता लगेगा कि सुन तुझे सर्वज्ञता का भरोसा है या नहीं। अनंत केवली भगवान देख रहे हैं, अनंत परमात्मा देख रहे हैं तो क्या कर रहा है, चोरी नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, कुशील व्यभिचार नहीं कर सकता, छल कपट नहीं कर सकता, दूसरे को धोखा नहीं दे सकता। तुझे यदि सर्वज्ञता का भरोसा हो जाए, तुझे यदि केवल ज्ञान का भरोसा हो जाए तो ये पाप तेरे जीवन से निकल जाएंगे। भरोसा करो सर्वज्ञता के ऊपर, भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। किसाब हमें सर्वज्ञता का तो पता है, लेकिन पंडित जी एक बात का और पता है, इसलिए हमें डर नहीं लगता। कि कौन सी बात का, कि भगवान वीतरागी है, कुछ बिगाड़ दे तो है नहीं। हमारे भगवान जानते तो हैं सब कुछ है, लेकिन वीतरागी है, वो कुछ करेंगे नहीं क्या, इसलिए हमारे को कोई चिंता नहीं है। कि सुन भगवान के ज्ञान में अकेला यही नहीं झलक रहा है कि तू पाप कर रहा है, उनके ज्ञान में ये भी झलक रहा है कि इस पाप के कारण तू कैसे कर्म बांध रहा है और भविष्य में किस प्रकार के कर्म भोगेगा। भरोसा करो सर्वज्ञता के ऊपर। सर्व द्रव्य पर्यायेषु, गजब की कितने नहीं, सर्व द्रव्य पर्यायेषु ऐसा सूत्र है, मैं पूरे 8 दिन इसके ऊपर चलाऊं दोनों टाइम, सर्व द्रव्य पर्यायेषु के ऊपर। महेंद्र भाई 8 दिन दोनों टाइम के प्रवचन 1.5-1.5 घंटा इस एक सूत्र के ऊपर करें, ऐसा सूत्र है। बोलो इतना रहस्य भरा है इसमें, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, और गारंटी देता हूं उसमें से कोई भी व्यक्ति प्रचला में नहीं जाएगा। प्रचला तो ख्याल में आया आपके, इतना मतलब आपके धारणा ज्ञान का विषय है, हैं धारणा तक पहुंच गया है मीर भाई, क्या है धारणा तक चला गया है प्रचला, याद रखना अगले साल तक। ऐसा नहीं हो कि प्रचला में चला जाए मैटर, निद्रा में चला जाए। चलो क्या गजब है भाई, सर्वज्ञता का भरोसा, पाप नहीं कर सकता है, सर्वज्ञता का भरोसा, हर परिस्थिति में सहज रहने की कला, घटनाएं हमारे साथ में घटी है, दोषारोपण करता है दूसरे के ऊपर, तू देख सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में अनंत काल पहले से झलक रहा है। सर्वज्ञता पे भरोसा, सर्वज्ञता पे भरोसा होता है तो क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा होता है। सर्वज्ञ पर्याय, सर्वज्ञता से क्रमबद्ध पर्याय टिकी हुई है। सर्वज्ञता के ऊपर भरोसा होता है, आपको पता लगता है, निर्भर हो जाता है, निश्चिंत तो हो जाता है, मैं क्या करूं साहब, क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सर्वज्ञता पे भरोसा है तुझे, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है क्या होना है, तू विकल्प मत कर। कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख व्यर्थ ही बोझा ढोता। जगत के मूर्ख लोग व्यर्थ में ही बोझा ढोया करते हैं, तेरे विकल्पों से काम नहीं होता है। काम किससे होता है, योग्यतानुसार होता है, कार्य योग्यतानुसार होता है, हमारे विकल्पों से नहीं होता है। भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। राग द्वेष कषाय नरक निगोद पर्याय भूत भावी लड़ाई झगड़े बेईमानी सब सब कुछ झलक रहा है भगवान के ज्ञान में। आप क्या करके भी उससे पहले कुछ नहीं कर सकते हो, फेर बदल नहीं कर सकते हो। मारी थी इतनी 50 घटनाएं सुना सकता हूं मैं, अभी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन 24वां तीर्थंकर बनना आदिनाथ भगवान ने देख लिया समय शरण में, और ये मारी थी विरोध करके निकल गया समय शरण से। कितना बुरा लगा होगा ना, फील तो हुआ होगा ऋषभ देव को, यार मेरा ही पोता निकल के बाहर चला गया, नहीं फील नहीं हुआ उनको बिल्कुल भी। भरत जी को तो बहुत ऐसा लगा होगा, ये मेरा बेटा आज मेरे पिताजी का अपमान कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा फील हुआ होगा भरत जी को। ज्ञानी थे वे जानते हैं, जिसको अभी 24वां तीर्थंकर बनना है, जिसको एक कूड़ा कूड़ी सागर तक संसार में रुलना है, परिभ्रमण करना है, जिसको अभी अनंत काल निगोद में बिताना है, उस व्यक्ति को विरोध का भाव नहीं आएगा तो क्या होगा। कोई व्यक्ति यदि आपके तत्व ज्ञान का विरोध करता है, कोई व्यक्ति यदि आपके स्वाध्याय का विरोध करता है, कोई व्यक्ति यदि आपके स्वाध्याय में डिस्टर्ब करता है, तो समता भाव रखो, भूला हुआ भगवान है, कोई बात नहीं। समता भाव रखो, इसका संसार लंबा है बेचारे का, ये तो अनंत संसार में रुलने वाला है, मैं क्या करूं। मैं इसके ऊपर क्या क्रोध करूं, मैं इसको क्या सजा दूं, मैं इसको क्या अपशब्द कहूं, मैं इसे क्या अपमानित करूं, ये तो खुद ही अनंत संसार में रुलने वाला है, मैं क्या करूं। मुझे तो दया आती है इसके ऊपर, ये बेचारा समझ नहीं पा रहा है। आप समझे, कई लोग होंगे जो आपको स्वाध्याय करने के लिए मना करेंगे, कई लोग होंगे जो आपके स्वाध्याय चिंतन मनन अभ्यास सत्संग प्रवचन कक्षा इन सबके अंदर अड़चन कांगड़ाएंगे बीच में, तो कहेंगे क्या चला रखा है कि मत चलने दो। कई लोग होंगे जो कहेंगे मत होने दो, मत करो कार्यक्रम, मत बुलाओ, मत रखो, मत ऐसा करो। कई लोग करेंगे ऐसा, आप उनके ऊपर गुस्सा मत करो, आप उनके ऊपर नाराज मत हो, अभी तो उनके बारे में ये विचार करो, बेचारों का संसार अभी लंबा है, तो इनको ये सब भाव कैसे आएंगे, विरोध कहीं आएगा इनको भाव, क्या करें भाई, बेचारे अनंत संसार में रुलने वाले हैं। सर्वज्ञता कह रही है, सर्वज्ञता पर भरोसा रखो, यहाँ न्याय है प्रकृति में, कहीं भी अन्याय नहीं है। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, हो गया, आगे बढ़े अपन। साहब आपने ये पांच तो बता दिए हैं, और आपने कहा कि ये दो होते हैं अपने, तो अपने तीन भी हो सकते हैं क्या, चार भी हो सकते हैं क्या, पांच भी हो सकते हैं क्या, ज्ञान एक साथ कितने हो सकते हैं एट ए टाइम किसी भी जीव के। नेक्स्ट सूत्र में बतलाते हैं, एकादिनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन ना चतुर्भ्य है, धीरे धीरे बुलवाता हूँ फिर ये, एकादिनी 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 क्या मतलब निकला, एक को आदि लेकर एक से शुरू करो, एक आदिनी फिर भाज्यानी 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 युगपदे कस्मिन्ना युगपदे कस्मिन्ना युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य 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 मतलब चार, एक आदिनी एक को शुरू करके, क्या मिनिमम यदि ज्ञान होगा, किसी को कम से कम ज्ञान होगा तो एक ज्ञान हो सकता है कि वह भाज्यानी जी शब्द का प्रयोग किया है, एक से शुरू करके दो तीन चार ऐसे विभाजित करते हुए, किसी के एक हो सकता है, किसी के दो हो सकते हैं, किसी के तीन हो सकते हैं, किसी के चार ज्ञान हो सकते हैं। क्या साहब हम तो बिल्कुल अज्ञानी हैं, हमारे तो एक ही होगा क्या, आपके कितने ज्ञान हैं? दो हैं, दो हैं पक्का, और भगवान के कितने हैं? बताया था दो तीन दिन पहले शायद, हमारे दो भगवान के एक, भगवान के एक हमारे दो, क्या है एक में चार, एक में पांचों आ गया, अरे पांचों क्या आ गए, उनकी जरूरत नहीं है। जब डायरेक्ट ज्ञान होता हो तो फिर उसकी क्या जरूरत है बताओ मेरे को, फिर जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हमारी अप्रोच हो किसी से तो फिर कहां बीच की जरूरत है, एक हो तो कितने ज्ञान होंगे, अकेला केवल ज्ञान, यदि एक ज्ञान होता है तो कौन सा होता है, केवल ज्ञान, दो होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, मति और श्रुत, और तीन होते हैं तो कौन से होते हैं, मति श्रुत और अवधि, या फिर मति श्रुत और मने पर्य, मति श्रुत के साथ में मने पर्य भी हो सकता है तीन होंगे तो, और मति श्रुत के साथ में अवधि भी हो सकता है तीन होंगे तो, बराबर चार होंगे तो, हाँ तीर्थंकर को जन्म से होता है, उसको भव प्रत्यय में शामिल किया है कई आचार्यों ने, भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान कहा ना देवों और नारकियों के भव प्रत्यय, तो उसमें तीर्थंकरों को भी शामिल किया, भरत और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के भव के निमित्त से अवधि ज्ञान होता है, तीर्थंकर भव माने अवधि ज्ञान जन्म से ऐसा। मैं तो ये कहता हूं तीर्थंकरों को अवधि ज्ञान जन्म से नहीं, गर्भ से, और गर्भ से नहीं पिछले जन्म से, तीर्थंकरों को अवधि ज्ञान पिछले जन्मों से होता है। उसका कारण ये कि तीर्थंकर बनने वाले सभी जीव या तो स्वर्ग से आते हैं या नरक से आते हैं। कोई भी मनुष्य त्रियंत से नहीं आता। तीर्थंकर बनने वाला जीव नियम से या तो स्वर्ग से आएगा या नरक से आएगा। नरक से आएगा तो वहां भी अवधि ज्ञान था, स्वर्ग से आएगा तो वहां भी अवधि ज्ञान था, और यहाँ आया तो गर्भ में भी अवधि ज्ञान है, मत इस अवधि ज्ञान है, और दीक्षा लेते ही तीर्थंकर बनने वालों को मने पर्याय हो जाता है, अपने आप मने पर्याय हो जाता है, 63 रिद्धियां प्रकट हो जाती है। ग्रंथरों के 63 रिद्धियां कहिए, केवलियों के तो सर्व रिद्धियां हैं। चलिए युगपत कितने हुए, 1, 2, 3, 4, कम से कम एक ज्ञान, फिर दो ज्ञान, फिर तीन ज्ञान, फिर चार ज्ञान। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चार ज्ञान तक पहुंच गए अपन, आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ो। एक इंद्रिय के दो ज्ञान, हाँ नहीं कोई क्रम नहीं है, क्रम नहीं है ऐसा, क्रम का है। एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के तो मति श्रुत है, इंद्रियों से इन ज्ञान का क्या संबंध है? ये तो अलग ज्ञान है ना। एक इंद्रिय का मतलब मति ज्ञान, दो इंद्रिय का मतलब मति श्रुत ज्ञान, तीन इंद्रिय का मतलब मति श्रुत अवधि ज्ञान, चार इंद्रिय का मतलब मति श्रुत अवधि मने पर यह ज्ञान, पंच इंद्रिय का मतलब मति श्रुत अवधि मने पर यह केवल ज्ञान। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं। आप क्या सुन रहे हैं इतनी देर से? ऐसा नहीं है। इसलिए एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय जीव और सैनी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि यहां तक मति श्रुत, कुछ ज्ञानियों के अवधि भी हो जाता है और कुछ मुनिराजों के मने पर्याय भी हो जाता है, और जो परमात्मा होते हैं उनके केवल ज्ञान होता है। चलो भाई, इनमें बड़ी गजब बात कहते हैं, हमारे मति श्रुत कह तो रहे हैं, हम कहने के लिए है मति श्रुत, सच बात तो ये उल्टे है, उल्टा है सारा मामला। उस ज्ञान को मति श्रुत ज्ञान कौन कहे जो अपने आप को ही नहीं जानता? सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना। सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना। अपने आप को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं जाना, क्या कहें तुझे मति और क्या कहें तुझे श्रुत? तो फिर अवधि, अरे ये सब विपरीत भी होते हैं। देखो 32 नंबर पे आओ आगे, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, बोलो मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, मति श्रुतावधयो, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, विपर्ययश्च, और विपरीत भी होते हैं क्या? विपर्ययश्च का मतलब और विपरीत भी होते हैं क्या? विपरीत भी होते हैं ये ज्ञान, कौन कौन से? मति, श्रुत और अवधयो। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान उल्टे भी होते हैं। कुमति, कुश्रुत आने कुअवधि, क्या मतलब? कुमति कुश्रुत किसको होता है? कुमति किसको, कुश्रुत किसको? मिथ्या दृष्टियों को, मिथ्या दृष्टियों को कुमति और कुश्रुत। ठीक है, और मिथ्या दृष्टि देवनारकियों को कुअवधि। ठीक है, सम्यक दृष्टि होंगे तो सुमति, सुश्रुत और सुअवधि। ठीक है, बराबर है। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, इतनी बात हो गई यहाँ। अब बढ़े आगे, कोई कहे कि यार ज्ञान तो ज्ञान होते हैं, ज्ञान में उल्टे उल्टे सीधेपन का क्या सवाल है? ये कैसी बात कर रहे हो आप, ज्ञान भी उल्टा होता है क्या कोई? कि हाँ कारण है उसके पीछे, ज्ञान के विपरीत होने के पीछे कारण है। क्या कारण है? सद सतोर, बोलो सद सतोर विशेषाद यदृच्छोपलब्धे, यदृच्छोपलब्धे, यदृच्छोपलब्धे। क्या क्या गिरीश भाई? यदृच, यदृच्छ आगे क्या है? यदृच्छो, यदृच्छोपलब्धे, यदृच्छोपलब्धे। सद सतोर विशेषात, सत सतोर विशेषात यदृच्छोपलब्धे ऋणमत्वत, ऋणमत्वत। देखो क्या कहा, सत और असत अविशेषात। इसका संधि विच्छेद, भाई देखो संस्कृत थोड़ी बहुत जानो ना तो सूत्रों का अर्थ बराबर लग पाता है ना। संस्कृत में क्या कह रहे हैं आप? सद असत, सद असतोह क्या, और अविशेषात, अविशेषात माने विशेष ना होने से, सत और असत का विशेष भान नहीं होने से, सत असत की विशेष पहचान न होने से, यत माने अपनी इच्छा अनुसार दृष्ट देखा गया, इच्छा के अनुसार यत इच्छा, यदृच्छो और उपलब्ध जैसा जानने में आया अपनी इच्छा से, सत असत का भान नहीं है, और जैसा अपनी इच्छा से जानने में आ गया तो क्या होगा? उन्मत्तवत, शराबी की जैसी हालत होती है। उन्मत्तवत का मतलब नशे में है, कुछ होश नहीं है नशे में होने के कारण, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, कभी कहता है मैं जीव हूँ, कभी कहता है मैं मनोज कुमार हूँ, कभी कहता है मैं संजीव कुमार हूँ, क्या 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 नाम बतलाओ मेरे को, मैंने इसको कुछ सिखाना नहीं है। कभी कहता है शरीर वाला हूँ, कभी कहता है बुढ़ापा है, कभी कहता है मैं तो अभी जवान हूँ, कभी कहता है मेरे में समझ नहीं है, कभी कहता है मैं ज्ञानवान हूँ, कभी कहता है शुद्धात्मा हूँ, कभी कहता है मैं रागी द्वेषी हूँ। तेरे को कुछ सिखाना है तो क्या बोलता है? कभी शास्त्र अनुसार बोलता है, कभी राग अनुसार बोलता है, कभी कषाय अनुसार बोलता है, उन्मत्तवत नशे की तरह बावड़े जैसे बातें करता है। इस सूत्र की व्याख्या में आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार्थ सिद्धि नामक के ग्रंथ में उदाहरण दिया है इसके लिए। शराबी व्यक्ति माता को माता कहे, कभी पत्नी को माता कहे, कभी माता को पत्नी कहे, और कभी सही भी कह दे पत्नी को पत्नी और माता को माता। जब उसने सही कहा है तब तो सही है ना, तब भी सही नहीं है क्योंकि वो नशे में बोल रहा है, उसको कुछ होश नहीं है। सही निकल गया है उसके मुंह से लेकिन उसको कुछ होश नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूं। शराब पीने के बाद ऐसा नशा हो जाता है क्या महेंद्र भाई? पता नहीं, आजकल की शराब नशा नहीं करती शायद। शराब भी मॉडर्न आने लग गई कि कुछ ऐसी नशा करती है शराब? पता नहीं मेरे को, आप लोगों से पूछ रहा हूँ भाई, यहाँ थोड़ी सी नॉलेज तो मुझे भी हो जाए आपसे। शराब पीने के बाद नशा आता है क्या? कंपलसरी है कि नशा आना? लिमिट में पियो तो नहीं आता शायद, ऐसा होता है क्या?
आता है,
झूठा आता
ही है,
उसका गुणी है झूठा। सही है। अभी देखो आप भरोसा नहीं कर सकते भाई साहब उसके ऊपर, सही कह रहा है तो भी भरोसा नहीं कर सकते। मैं कई बार ऐसा कहता हूँ, हम रोड पर जा रहे हैं, हाईवे पर जा रहे हैं और दो तीन रास्ते आ गए बीच में, अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी से पूछना है, कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है, नेटवर्क काम कर नहीं रहा है, जीपीएस काम नहीं कर रहा है, अब क्या करें बोलो? अब इधर जाएंगे और आगे बढ़ गए मान लो तो 50-60 किलोमीटर तक आगे फिर कोई चांस नहीं है वापस घूम के आने का, अब क्या करें? और ऐसी स्थिति में आपको यदि कोई व्यक्ति दिखता है आगे, तो आगे दिख रहा है कोई व्यक्ति और आप पीछे से चलते आ रहे हैं तो आपको हिम्मत लगती है कि नहीं? लेकिन थोड़ा जैसे जैसे नजदीक आए तो आपको लगा कि वो व्यक्ति जो चल रहा है वो झूलता हुआ चल रहा है, थोड़ा सा लहराता हुआ चल रहा है, हाथ में एक बोतल है उसके, क्या अब बोलो क्या करना है, है पूछना कि नहीं पूछना, नहीं पूछना, कोई नहीं है पूछ लेना, कोई बात नहीं, क्या पूछ लेना, क्या पूछेंगे क्या करेंगे अब, कोई बात नहीं, जो भी बताएगा जैसा भी है, भरोसा करना कि नहीं करना, है नहीं करना, तो फिर उसने जिधर बताया उधर नहीं जाना, दूसरी तरफ जाना कि नहीं नहीं जिधर उसने बतलाया है जाना उधर ही, लेकिन तो भी भरोसा नहीं करना, कि क्या मतलब कि जब भी मौका लगे किसी दूसरे से पूछने का तो दोबारा उसको कंफर्म करना, भरोसा नहीं किया जा सकता है, कदाचित वो नशे में सही भी कहे कदाचित गलत भी कहे। ये जो मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी लोग कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों के ऊपर मोह और मिथ्यात्व की शराब हावी है। मोह की शराब पीने के बाद, मिथ्यात्व का नशा चढ़ने के बाद, जब उन्हें सत असत अविशेषात सदसत और विशेषात सत और असत का भान नहीं है उनको, अब बोले उनकी दशा उन्मत्तवत है, इसलिए हम उसको कुमति कहते हैं, उसको कुश्रुत कहते हैं, उसको कुअवधि कहते हैं। पांच प्रकार के ज्ञान की चर्चा संपन्न हुई यहाँ। कोई शंका आप लोगों को, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बतलाओ, आपके ज्ञान में पांच ज्ञान आए कि नहीं, आपके ज्ञान में पांच ज्ञान नहीं आए हैं? दो होते हुए भी दो में इतनी ताकत है कि पांच को जान सके, बोलो गिरीश भाई क्या कहना है?
आपने बताया तीर्थंकर का जीव स्वर्ग और नरक से ही आता है।
हाँ,
और जो लोग तीर्थंकर के जीव नहीं है वो लोग मोक्ष जाएंगे तो मनुष्य गति से ही जाएंगे।
हाँ, तीर्थंकर का जीव भी मनुष्य गति से ही मोक्ष जाएगा, आएगा स्वर्ग से, स्वर्ग से आएगा कहाँ, मनुष्य गति में।
अच्छा,
फिर तीर्थंकर होगा, तीर्थंकर बनने वाला जीव नरक से आएगा तो नरक से तीर्थंकर नहीं बनेगा, नरक से आएगा मनुष्य गति में फिर तीर्थंकर बनेगा, है ना? इसलिए तीर्थंकर बनने के पहले कौन सी गति में था ये बतलाने के लिए हमने कहा है कि वो या तो देव गति में था या नरक गति में था। चलिए, मेरे हिसाब से ये संपन्न हो गई है चर्चा। एक सूत्र और बचा है, महत्वपूर्ण सूत्र है ना, इसकी चर्चा कर लें अपन थोड़ी सी। क्या है सूत्र के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं? देखो भाई, पीछे छह नंबर का सूत्र दिया था, एक प्रमाण नैर अधिगम है, याद है आप लोगों को? भूल गए? प्रमाण नैर अधिगम है, छह नंबर पे दिया था, है पक्का है, याद है ना? धारणा का विषय होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हुए नौ नंबर के सूत्र में क्या कह दिया था? मति श्रुताब्दी मने पर ये केवलानी ज्ञानम, और फिर कहा तत् प्रमाणे, माने प्रमाण की चर्चा प्रारंभ कर दी उन्होंने। छह नंबर के सूत्र में उन्होंने प्रमाण नय अधिगमे कहा, प्रमाण और नय इन दो से ज्ञान होता है। फिर नौ नंबर के सूत्र से ज्ञान की चर्चा करके तत् प्रमाणे कह करके प्रमाण प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण परोक्ष ये सब प्रमाण प्रमाण की चर्चा हुई। तो ये इस सूत्र तक तत्त्वतोर तक प्रमाण की चर्चा पूरी कर चुके हैं। अब वो जो छह नंबर के सूत्र में एक और जो नए बतलाया था, प्रमाण और नए, तो ये नए बतलाने के लिए ये सूत्र है, अंतिम सूत्र है ये नए बतलाने के लिए। क्या क्या कह रहे हैं? नयगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द शब्दा नया। नीचे देखो, दो नंबर देखो, एक नीचे फुट नोट में शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया, शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया, मैंने मुझे शब्द है ना ऊपर, उस शब्द की जगह है, इतनी बातें और जोड़नी है। शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया, देखो भाई नए बतला रहे हैं यहाँ पर, नए क्या चीज होती है, मैंने बतलाया था नए, नए मतलब एंगल, दृष्टिकोण, अपेक्षा, विवक्षा, इस अपेक्षा से, इस अपेक्षा से, नए नए मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स देखना, ठीक है। अब ये कह रहे हैं नए सात प्रकार के होते हैं, आपने कितने प्रकार के पढ़े आज तक, कितने प्रकार के पढ़े आज तक आपने नए? निश्चय व्यवहार दो, और भी पढ़े होंगे, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, ये दो पढ़े हैं आपने, ये सात बता रहे हैं वहां स्वामी आचार्य। सात प्रकार के नए होते हैं, मैं सात प्रकार के नयों का बहुत संक्षिप्त वर्णन करूंगा, आप लोग एक एक का स्वरूप समझने का प्रयास करना। अपेक्षाओं को समझे बिना अनर्थ हो जाता है, ठीक है ना। सामने वाले की कहने की क्या विवक्षा है, सामने वाले के कहने की अपेक्षा क्या है, सामने वाले के कहने वाले वाक्य के पीछे छिपा हुआ अभिप्राय क्या है, उसे नहीं समझो तो अनर्थ हो जाएगा। राग जीव का है कि पुद्गल का है? पुद्गल का नहीं है। और मैं शास्त्र में पुद्गल का दिखा दूं तो विवक्षा बता देंगे। और क्या है, पुद्गल का कहने की जो विवक्षा है वो बता देंगे। जीव मूर्तिक है या अमूर्तिक है? जीव अमूर्तिक है, व्यवहार से मूर्तिक भी कहा है उसको, शरीर की अपेक्षा से मूर्तिक कहा है, कर्म की अपेक्षा से मूर्तिक कहा है, संसार दशा में शरीर सहित अवस्था की अपेक्षा से जीव को मूर्तिक कहा है, निश्चय से अमूर्तिक है। तो अपेक्षाएं समझना बहुत जरूरी है। चलो अपेक्षाओं की चर्चा में सबसे पहले नंबर का नए है जिसका नाम है नयगम। पहले नए का नाम क्या है? नए के ऊपर दो मात्राएं और ग और म, तीन अक्षर हो गए नयगम। याद रखना भाई, धारणा तक पहुंचाना सात बातों को। प्रकाश भाई पहला क्या है? नयगम। ये नयगम क्या होता है, नयगम क्या चीज है? नए है, पहले नंबर का नए है नयगम। किसे कहते हैं? तीन प्रकार का है, भूत, वर्तमान, भविष्य। बहुत इजी है, भूत नयगम ने, वर्तमान नयगम ने, भावी नयगम ने। कितना सरल हो गया, भूत नयगम ने, वर्तमान नयगम ने, भावी नयगम ने। नयगम नय के तीन भेद बता रहा हूँ, फर्स्ट नंबर वाले के तीन भेद है नयगम नय के तीन भेद। नयगम नय कहते किसे हैं? क्या तत्र संकल्प मात्रस्य ग्राहको नयगमो नय है, संकल्प मात्र का ग्राहक नयगम नय है। अनिष्पन्न को निष्पन्न देखता है वो नयगम नय है, काम हुआ नहीं है उसे पूरा देखता है वो नयगम नय है। क्या बात कर रहे हो, क्या है ये नयगम नय? ये नयगम नय क्या बात करता है, काम पूरा नहीं हुआ है और पूरा देखता है। आप प्रयोग करते हो या नहीं ऐसे गिरीश भाई? क्या करते हैं ऐसे प्रयोग? हम हजारों बार प्रयोग करते हैं, काम करना शुरू किया हमने, क्या भोजन बनाना शुरू किया आपने और पूछा आपसे खाना बन गया क्या? कि हाँ बन गया, बैठो तैयार है क्या? और थाली पर जाकर के बैठो और 15 मिनट तक कुछ नहीं है अभी। आप तो कह रहे थे तैयार है, तैयार होने वाला है, इसको भी क्या कह देते हैं? तैयार है। आपको कोई काम सौंपा गया, क्या क्या किया कि नहीं किया? कल करने वाले हैं क्या? फिर भी रमेश भाई काम दिया कोई तो क्या कह सकते हैं? मुकुंद भाई क्या कहेंगे? रमेश भाई को दिया है, हो गया। क्या 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 कहेंगे? चिंता हो गया तुम, अब तुम्हारी टेंशन नहीं है, तुम्हें तो हो गया बस, तुम तो आगे नेक्स्ट काम बोलो, आगे बताओ हो गया। क्या बात कर रहे हो आप, देख तो कल की, आज ही कैसे हो गया? अरे हो जाएगा, हो गया मतलब होने वाला है। काम शुरू हुआ हो उसे संपन्न देख लेना, ये एक दृष्टिकोण है, ये एक अपेक्षा है, इसे झूठ नहीं कहते, इसे नए कहते हैं, ये नयगम नय है। समझ में आ रही है बात? आप कहोगे साहब झूठ बोलते, कितना झूठ बोलते, क्या ये झूठ नहीं है, संकल्प है ना, संकल्प को ग्रहण कर रहा है। आप घर से निकले शिखर जी जाने के लिए, इंडिया जाने के लिए निकले, क्या घर से निकल गए आप, निकले हुए आपको 15 मिनट हुई है, आधा घंटा हुआ है, लैंडलाइन पर किसी का कॉल आया मुकुंद भाई आपके लिए, तो क्या जवाब देंगे घर से?
इंडिया
से क्या कहेंगे?
अभी
गए कि क्या हुआ, कहाँ गए? बोले इंडिया निकल गए। इंडिया निकल गए, अच्छा भाई चलो ठीक है, उसने फोन रख दिया बेचारे ने, इंडिया गए हुए हैं कोई बात नहीं। वो मार्केट से निकल रहा था और आपको गाड़ी में बैठे हुए देख लिया क्या कितने झूठे हैं ये लोग है? अभी मैंने 15 मिनट पहले फोन किया था और मेरे को क्या कहते हैं इंडिया गए क्या, और मैंने मायामी में देखा उनको क्या, झूठ बोला कि सच बोला? मैं आपसे पूछता हूँ, बोला तो सच है भाई, इंटेंशन गलत नहीं है, अभिप्राय गलत नहीं है, घर से गए हैं माने इंडिया के लिए गए हैं, माने इंडिया गए हैं क्या? अब घर कब आएंगे? बोले अब तो 8 दिन बाद आएंगे, अब तो 15 दिन बाद आएंगे क्या? क्यों कितने झूठे, मेरे से कहा 15 दिन बाद आएंगे और ये तो यही घूम रहे हैं। अरे भाई घूम नहीं रहे, हम झूठ नहीं कह रहे हैं, और कदाचित ऐसा भी हो जाए क्या कि वो एयरपोर्ट पहुंचे और फ्लाइट छूट जाए क्या, और दूसरे दिन जैन सेंटर में मिल जाए? अरे यार हद हो गई झूठ की, इतना भी झूठ होता है भाई, 15 दिन बाद में आएंगे और ये यही मिल गए। बोलो कोई व्यक्ति यदि गलत धारणा बना लेवे तो बना लेवे, यदि ये बात क्लियर नहीं करो आप तो झूठा ही मानोगे ना उनको हमेशा के लिए क्या? मन में तो आया कि इसको सुना दूं एक बार अच्छे से लेक्चर क्या, फिर सोचा यार जैन सेंटर में आया है, शांति बनाए रखो, अपन ने समझ लिया ना ये लोग कैसे हैं। अरे तूने जो समझा है वो गलत समझ रखा है, ऐसा नहीं है, झूठ नहीं बोला गया है, सच बोला गया है क्या? किसी भी प्रोग्राम के बारे में प्री डिक्लेरेशन जो भी है वो सब क्या कहलाएगा? नैगम नय का विषय है। पहले से हमने जिनके बारे में घोषणा कर दी है ये काम ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है, नैगम नय का विषय, अब हो सकता है प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि नैगम नय संकल्प को ग्रहण करता है। समझ में आ गई बात? शास्त्रों में तो कई तरह के एग्जाम्पल बतलाए हैं इसके लिए, मैं शास्त्रों के आधार पर भी बात करूं तो मैं बहुत तरह की बातें कर सकता हूं नैगम नय को समझाने के लिए, इतनी बातें कर सकता हूं, मतलब आप समझ लीजिए। एक दिन जैसे मैंने आपसे बात कही थी इंद्रभूति को गणधर कहना, इंद्रभूति को गणधर कहना भूत नैगम नय का विषय है, आप समझ? राजा श्रेणिक को पहला तीर्थंकर कहना भावी नैगम नय का विषय, राजा श्रेणिक पहले तीर्थंकर है या नहीं है? है ना, कब के? आगामी 24 के, अभी कहाँ है? अभी नारकी है और आप अर्घ चढ़ा रहे हो उनको, क्या होता है ऐसा? कोई दिक्कत नहीं है, ये नैगम नये है। बहुत शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, आपको पता है तीन पद के धारी थे, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, ये नैगम नये के बिना तीन पद के धारी नहीं कह सकते। मनोज भाई, मयूर भाई, शांतिनाथ भगवान तीन पद के धारी, तीर्थंकर और चक्रवर्ती और कामदेव तीन पद के धारी, ये नैगम नय कह रहा है? नैगम नय नहीं हो तो नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि जो चक्रवर्ती होते हैं वो तीर्थंकर नहीं होते हैं, जब तीर्थंकर बनते हैं तो चक्रवर्ती नहीं बने रहते, समझ रहे हैं आप? जन्म से कामदेव तो होते हैं क्या, चक्रवर्ती नहीं होते, चक्रवर्ती बाद में चक्ररत्न प्रकट होता है। तो ये सब आगे पीछे की दशाएं हैं, एक साथ कह दिया हमने नैगम नय इस प्रकार का प्रयोग करता है, समझ में आ रही है बात? देखो नैगम हो गया, आगे बढ़े अपन नैगम के बाद। अरे नैगम के प्रयोग तो कभी कभी तो ऐसा भी प्रयोग कर देते हैं नैगम नय के प्रयोग में, एक व्यक्ति को बोतल के साथ में देखा और हमने कहा नारकी है तो क्या क्या कहा बोतल के साथ में देख के क्या कहा हमने नारकी है, क्या झूठ बोल रहे हो यार, मनुष्य गति का जीव है तुम नारकी कह रहे हो कि नहीं ये नरक जाएगा, इसलिए उनकी नरक दशा अभी हमें दिख रही है और हम भावी नैगम ने से उसे नारकी कह सकते हैं। ऐसा प्रयोग धवला में किया है मुकुंद भाई, धवला में इस प्रकार का प्रयोग करके बतलाया है। बहुत तरह की बातें, मेडिकल कॉलेज में कोई स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, डॉक्टर साहब कहने लगे, कोई रिटायर्ड हो गए फिर भी पास्ट बात के आधार पर उनको रिटायर्ड होने पर भी जज साहब कह रहे हो, डॉक्टर साहब थे डॉक्टरी करना बंद कर दिया, मरीज देखना बंद कर दिया, स्वाध्याय करते हैं फिर भी आप उन्हें डॉक्टर साहब कहकर के पुकारते हैं, प्रोफेसर थे कॉलेज में पढ़ाते थे रिटायर हो गए हैं अब पढ़ाना लिखाना बंद कर दिया, आज भी आप कहते हैं और प्रोफेसर साहब कैसे हैं, कैसे प्रयोग हैं ये सब नैगम नैगम नए के प्रयोग हैं। समझ में आ रही है, कठिन तो नहीं है, नैगम समझ में आ गया, प्रयोग करते हैं। अब नैगम नए के कथनों को झूठ तो नहीं मानेंगे, मेरे से किसी व्यक्ति ने पूछा आप जैना में आ रहे हैं, मैं कहा पहुंच रहा हूं जैना में, नैगम नय का प्रयोग है। ये नैगम नय का प्रयोग मुकुंद भाई सच्चा तब कहलाता है जब आपका इंटेंशन सही हो, क्या जाना तो है नहीं कह दो फिर मायाचारी फिर झूठ है। आप तब कथन कर सकते हैं जब आपके टिकट हो गए हैं, आपके जाने की प्लानिंग है, आपका प्रोग्राम है, आपके फ्यूचर प्रोग्राम के अंदर वो बात शामिल है, आप कह सकते हैं हाँ ठीक है हम जा रहे हैं, हमारा प्रोग्राम है वहां, प्रवचन है हमारे, प्रवचन होंगे हमारे वहां पे, तो हम बोल सकते हैं इस तरह की बात। ये नैगम नय के प्रयोग। संग्रह, संग्रह की तरफ बढ़ो आगे, संग्रह किसका नाम है, संग्रह तो संग्रह शब्द है, संग्रह माने क्या होता है इकट्ठा करना, संग्रह माने क्या है इकट्ठा करना, जो नहीं परिग्रह नहीं, क्या बात कर रहे हो आप, ये तो दृष्टि की बात है, दृष्टि की बात है भाई, नए है ना, नए वस्तुओं के संग्रह की बात नहीं है लेकिन वस्तुओं को संग्रहित देखने की बात है, पदार्थों को संग्रहित देखने की बात है। संग्रह नए का विषय क्या होता है, संग्रह नए, नए मतलब ज्ञान की पर्याय, नए मतलब जानने वाला दृष्टिकोण, किसको देख रहा है नए, इकट्ठा देखने वाले जितने शब्द होंगे सब संग्रह नए के विषय है। हमने कहा संसारी संग्रह नए का विषय है, संसारी में कौन छूट गया, अकेले सिद्ध भगवान छूटे, बाकी सब गर्भित हो गए ना, तो संग्रह नए मतलब ऐसे शब्द जिन शब्दों में बहुत सी चीजों को इकट्ठा कर लिया जाए। जैसे हमने कहा जीव, तो जीव कहते गर्भित हो गए, बहुत सारे जीव आ गए उसके अंदर, हमने कहा नारकी तो सारे नारकी एकत्रित हो गए उसके अंदर, हमने कोई भी शब्द का प्रयोग करो, हमने कहा कैरी तो कैरी में मुकुंद भाई के घर की कैरी आएगी कि नहीं, इनके घर की भी आ जाएगी और हमारे जयपुर वाली आएगी और रत्नागिरी वाली हो जाएगी, रत्नागिरी वाली पहचानते हैं आप लोग, तो सब आ जाएंगे, माने एक शब्द है। हमने कहा तत्वार सूत्र, जब हमने तत्वार सूत्र शब्द का प्रयोग किया, संग्रह नय का प्रयोग है, तत्वार सूत्र बोलने पर दुनिया में जहां जहां जो जो तत्वार सूत्र की रचनाएं हैं, जो जो तत्वार सूत्र की टीकाएं हैं, वो सब तत्वार सूत्र शब्द के माध्यम से संग्रहित हो गई, संग्रह नय का विषय है। समझ में आ रही है बात, बहुत जगह पर शास्त्रों में महेंद्र भाई संग्रह नय के प्रयोग होते हैं और ये संग्रह नय के प्रयोग को समझ नहीं पाता है इसलिए गड़बड़ कर देता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, शास्त्र में लिखा छेड़ाला में, यह राग आग दहे सदा, सुनिए लाइन, ये राग आग दहे सदा, ये राग आग के समान है, संग्रह नय का प्रयोग है, राग को आग कहा है, लेकिन ये डेढ़ होशियार होता है ना, डेढ़ अकल वाला, वो संग्रह ने तो समझता नहीं है। वो कहते नहीं नहीं, अशुभ राग तो आग है, शुभ राग नहीं। अरे भाई साहब, यहाँ राग शब्द का प्रयोग किया है, तू भेद क्यों डाल रहा है उसमें? तो समझ में आ रही है बात? आश्रव दुख कार घने रे, क्या कहा? आश्रव दुख कार घने रे, आश्रव घना दुख देने वाले हैं। कौन सा नए लगेगा यहाँ? संग्रह लगाओ, संग्रह। क्या मतलब? नहीं अभी समझ में नहीं आया। संग्रह नहीं कैसे लगेगा? माने आश्रव के भेद मत करना, एक ऐसा शब्द है जिसमें सभी प्रकार के आश्रव गर्भित हो गए हैं। आश्रव को यदि दुखकारी कहा गया है तो वो संग्रह नहीं का प्रयोग है, संग्रहित करके कहा है। तुम उसमें भेद मत डालो कि पाप आश्रव दुखकार घनेरे, पुण्य आश्रव सुखकार बद्दाच। आश्रम माने आश्रम, सारे आश्रम। हमने कहा कि ये सैनी पंचेंद्री जीव, उनमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता है। बोलो तो गधे में है या नहीं है? है गधा सैनी पंचेंद्री है? क्या बात कर रहे हो आप? गधा सैनी पंचेंद्री है। जब हमने सैनी पंचेंद्री शब्द का प्रयोग किया तो तीन लोक में जो जो सैनी पंचेंद्री है सब गर्भित हो गए उसमें। संग्रह नहीं का प्रयोग है, संग्रह संग्रहित करता है। बड़ा गजब की बात है भाई, संग्रह संग्रहित करके बात करता है, भेद नहीं डालना। अरे ये संग्रह नए अभेद की बात करता है, संग्रह नए अखंड की बात करता है, संग्रह नए एकता की बात करता है, व्यवहार में तोड़ने की बात करता है। जातिगत व्यवस्थाओं के आधार पर तोड़ने का काम व्यवहार नए का है और जोड़ने का काम संग्रह नए का है। बोलो, हम सब जैन हैं। संग्रह ने, संग्रह ने बात करता है, हम सब जैन हैं। व्यवहार में भेद डाल देता है। इसके आगे वाले नए का नाम क्या है? व्यवहार ने। संग्रह नए के द्वारा संग्रहित पदार्थों में भेद कर देना वो व्यवहार नए का काम है। जहां भी भेद देखे आपने, भेद तो व्यवहार, भेद तो व्यवहार, भेद देखने का नाम व्यवहार है, टुकड़े देखने का नाम व्यवहार है। किसमें? संग्रह जिसमें किया था उसमें करना भेद। देखो मैं ऐसे समझाता हूं इसको, संग्रह व्यवहार दोनों को समझो। जैसे द्रव्य संग्रह का विषय, द्रव्य संग्रह का विषय। अब हमने कहा जीव पुद्गल घर अधर्म आकाश काल व्यवहार हो गया। मुकुंद भाई भेद देखे ना, व्यवहार हो गया। फिर हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा सिर्फ जीव, तो जीव इटसेल्फ संग्रह नहीं का विषय है क्योंकि उसमें अनंत जीव शामिल हो गए हैं। लेकिन हमने आगे कहा संसारी और मुक्त, भेद देखे व्यवहार हो गया। हमने कहा संसारी जीव, ये संग्रह नहीं का विषय है क्योंकि सारे संसारी गर्भित हो गए। फिर हमने कहा संसारी जीव नहीं, संसारी जीव के चार भेद, मनुष्य त्रियंश देव नारकी, बोले व्यवहार हो गया। ठीक है, तो हमने कहा मनुष्य से संग्रह नहीं का विषय हो गया। फिर हमने कहा आर्य और मलेच्छ, व्यवहार हो गया। भेद दिखेंगे तो व्यवहार, अभेद दिखेगा तो संग्रह। समझ में आ रही है बात? संग्रह और व्यवहार की ऐसी जोड़ी है, ये निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार नहीं है, वो व्यवहार में अलग है। निश्चय व्यवहार नहीं वाला, ये व्यवहार में अलग है। वो उच्चरित बात भी करता है, ये सिर्फ भेद की बात करता है। वो भी संग्रह नए में भेद की बात करता है। निश्चय व्यवहार में जो व्यवहार नए है, ध्यान देना, वो कैसी लगावटी बात करता है, मिलावटी बात भी करता है, संयोगों की बात भी कर लेगा, शरीर आत्मा एक है ये बात भी कह देगा, वो व्यवहार नए, निश्चय व्यवहार वाला। और ये जो संग्रह व्यवहार वाला व्यवहार नए है, ये व्यवहार नए सिर्फ भेद। संग्रह के बिना व्यवहार नहीं होता, व्यवहार के बिना संग्रह नहीं होता। समझ रहे? संग्रह के बिना व्यवहार नहीं, व्यवहार के बिना संग्रह नहीं। एक पिता के इकलौते पुत्र की आयु 5 वर्ष की है, पांच वर्ष की आयु है पुत्र की, पिता की आयु कितनी होगी? ठीक है, अजीब वगरीब सवाल करते हो आप, उठाने पागल समझ रखा है हमारे को कुछ। सवाल तो सही पूछो कम से कम। मैंने क्या पूछा? क्या होगी उम्र बोलो? बता सकता हूं मैं कितनी होगी? बोले पांच वर्ष। ये क्या बकवास करते हो? पिता पांच वर्ष से है वो। मैंने पितापन की उम्र पूछी है, पिता कब से है? बच्चा कितना बड़ा है तो वो पिता कब से बना है? तो पांच साल से पहले पिता था या नहीं था? नहीं था। तो पिता की उम्र कितनी है? पांच साल की है। अरे पुत्र के बिना पिता ही नहीं, संतान के बिना पिता कैसे? पिता के बिना पुत्र नहीं, पुत्र के बिना पिता नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो व्यवहार के बिना संग्रह नहीं, संग्रह के बिना व्यवहार नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथ में लेकर के चलना पड़ेगा आपको संग्रह और व्यवहार नयों को। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है आपके? क्या ये तो मैंने तो बहुत कठिन सवाल नहीं पूछा था, मैं तो इतना कठिन तक पूछ सकता हूं मनोज भाई आपसे सवाल। क्या मानो आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं, अपन एरोप्लेन के पायलट हैं आप, और एरोप्लेन यहां से रवाना हुआ मान लीजिए मायामी से, और मायामी से यदि वो एरोप्लेन रवाना हुआ है महेंद्र भाई, और यहां से जाना है उसको शिकागो। क्या दो घंटे के अंदर शिकागो पहुंचता है, चार घंटे वहां रुकता है, और वहां चार घंटे रुक करके फिर तीन घंटे के अंदर वो डलास पहुंचता है, फिर डलास दो घंटे स्टे करता है, फिर वहां से डिट्रॉइट जाता है, तीन घंटे वहां रुकता है, फिर वहां से वहां पहुंचने के अंदर तीन घंटे लगते हैं उसको, फिर वहां से दो घंटे रुक करके वापस चार घंटे में यहां आता है। बताओ पायलट की एज क्या होगी? बता सकते हो? नहीं बता सकते? बता सकते हैं, जितनी आपकी उम्र है। ये क्या बात कर रहे हो? अरे भाई साहब मैंने क्या कहा था, माना कि आप पायलट हैं और हवाई जहाज यहां से उड़ करके मैंने क्या कहा, माना प्रज्ञेश भाई आप पायलट हो और यहाँ से हवाई जहाज उड़ता है इतने घंटे में, अभी घंटे किलोमीटरों में घूम रहा है। हमने पूछा पायलट की उम्र क्या है, पायलट तो आप हो। क्या कितनी सिंपल सी बात है। चलो कोई बात नहीं, संग्रह व्यवहार हो गया, आगे चलो। हाँ संग्रह व्यवहार के बाद में आगे चलो। ऋजु सूत्र नहीं किसे कहते हैं? ऋजु सूत्र नहीं कहते हैं, वर्तमान पर्याय ग्राही ऋजु सूत्र नये है। सिर्फ वर्तमान को देखता है, प्रेजेंट को देखता है, जो कहेगा प्रेजेंट के बारे में बोलेगा। अब इसका बड़ा चमत्कार है, इसका काल देखने का एंगल अलग अलग तरह का है। कितना लंबा, कभी कभी तो ऐसे प्रयोग कर देता है ये ऋजु सूत्र नये, जो ये कहता है। मैं कई बार मिलता हूँ हमारे विद्यार्थियों से, मिलता हूँ कभी मिले वो बहुत समय बाद में, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, कभी जब बात होती है उनसे तो पता है मेरे से क्या कहते हैं? भाई साहब बीएड कर रहा हूँ, एमए कर रहा हूँ, भाई साहब एमबीए कर रहा हूँ। मेरे को आज तक मुकुंद भाई किसी ने ये जवाब नहीं दिया कि अभी आपसे खड़ा हुआ बातें कर रहा हूँ। क्या माने? देखो ये ऋजु सूत्र नए है ना, ये वर्तमान को छोटा भी कर देता है और वर्तमान को लेंदी भी कर देता है, ये वर्तमान को पकड़ता है। माने जो व्यक्ति समझ लीजिए एमए कर रहा है, वो व्यक्ति ऐसा फील करता है कि मैं दो साल तक एमए ही कर रहा हूं। क्या उसका जो वर्तमान है, अच्छा तीन महीने बाद में मिला, मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले एमए। मैंने कहा यार पहले मिले थे तीन महीने तब भी एमए कर रहे थे, आज भी एमए कर, अभी भी एमए कर रहे हो, ये कब तक चलता रहेगा? बोले दो साल का वर्तमान है। होता है ऐसा? आज कौन सी तारीख है? 1 जून 2017। 1 जून 2017 है ना? अच्छा ये आज कितना लंबा हुआ? 24 घंटे का। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जून। 30 दिन का वर्तमान। आप यदि वर्तमान में जून कह रहे हो तो 30 दिन का वर्तमान हो गया ना। आप वर्तमान में 2017 कह रहे हो तो 365 दिन का वर्तमान हो गया कि नहीं? अभी यदि आप पंचम काल बोल रहे हो 21,000 वर्ष का वर्तमान हो गया, और आप जब तीर्थंकरों को देखते हो और कहते हो वर्तमान 24 ही, तो कूड़ा कूड़ी सागरों को वर्तमान में शामिल कर लेते हो। कभी कभी ऐसे उल्टे सीधे प्रयोग भी करते हुए देखे हैं हमने आपको। कभी तो आप इस प्रकार की बातें कहते हो, कभी किसी को बतलाते समय, बेटा बहुत पुरानी बात बतला रहा हूं, बहुत पुरानी बात बतला रहा हूं, कोई समझो 25-30 साल पुरानी बात होगी, बहुत पुरानी बात है। और कभी हमने आपको ये कहते हुए भी सुना है कि कोई ज्यादा पुरानी बात थोड़ी ने, अभी महावीर भगवान के समय की बात है। पच्चीस साल के लिए तो कह रहा है बहुत पुरानी बात है, और 2500 साल के लिए कह रहा है कि अभी महावीर भगवान का काल कोई ज्यादा लंबा पुराना नहीं है रमेश भाई, अभी। ये कौन सा नए है जो इन बातों को सत्य कहता है? वो नए है ऋजु सूत्र नए, बराबर। आगे शब्द नए, ऋजु सूत्र नए के बाद में शब्द नए। क्या भाई 2-3 मिनट ज्यादा लेने की संभावना है ना, अपने टाइम से 2-3 मिनट की बात रखता हूं मैं, कोशिश करता हूं कि 2 ही मिनट में खत्म कर दूं, लेकिन होगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। अब मजा आ रहा है ना, हाँ तो फिर चलो। ऋजु सूत्र नए के बाद में शब्द नए। शब्द नए क्या काम करता है? शब्द नए शब्दों को पकड़ता है, भाषा को पकड़ता है। शब्द नए कहता है आपकी भाषा व्यवस्थित होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जिसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए उसके लिए उसी शब्द का प्रयोग होना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, लिंग की दृष्टि से, संख्या, बहुत तरह के, बोले व्याकरण के नियमों का कड़ाई से पालन हो, उसमें कुछ भी अपवाद नहीं होगा, शब्द नए कहता है। समझ में आई क्या कुछ बात? बहुत तरह का घोटाला चलता है भाषा में। क्या अगले साल हम मांग गए थे, साल या विचार, अगले साल फ्यूचर को बतला रहा है और गए थे पास्ट की बात कर रहा है, एक ही वाक्य में फ्यूचर और पास्ट दोनों उठा रहा है। खिचड़ी भाषा होती है ना ऐसी। क्या संख्या व्यभिचार, भाषा व्यभिचार, व्यभिचार मतलब मिला देना एक दूसरे में, ये शब्द नए हैं। ये कह रहा है भाई साहब आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, हिंदी बोल रहे हो तो हिंदी ही बोलना, इंग्लिश बोल रहे हो तो इंग्लिश ही बोलना, तुम्हें गुजराती में बात करो चाहो तो गुजराती में ही करो, इधर उधर नहीं, हिंदी में गुजराती, गुजराती में हिंदी, इंग्लिश में हिंदी, गुजराती में, ये सब खिचड़ी नहीं चलेगी। अब आश्चर्य तो तब होता है मुकुंद भाई जब शब्द बोलता है हिंदी का, क्या, और टेंस लगाता है इंग्लिश का, वर्ड बोलता है इंग्लिश का, क्या, और उसके साथ में व्याकरण लगाता है हिंदी की। जैसे बताऊं आपको, अभी चलो ना तो लाइटें बंद करके चलना, लाइटें कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है बताओ, मेरे को समझ में नहीं आता लाइटें क्या होता है, लाइटें या लाइट, लाइट तो इंग्लिश का शब्द है ना, और उसमें टे लगा दिया हिंदी का। स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती आजकल, क्या कहें आपको, स्कूलों में, ऑफिसों का तो हाल खराब है, और इंडिया में ट्रेनों का टाइम तो भगवान ही मालिक है, ट्रेनों का टाइम कुछ समझ में आ रहा है क्या हो गया है हमारी भाषा को, हमें कुछ नहीं पता। ये उमा स्वामी आचार्य कहते हैं भाषा को संभालो, लिंग संख्या भाषा व्याकरण बराबर एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, कम से कम शास्त्र पढ़ने पढ़ाने वाले की लैंग्वेज सही होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, ठीक है। शब्द नए, भाषा सुधार की बात की। समविरूढ़ नए, समविरूढ़ वो क्या कहता है, समविरूढ़ शब्द है इसमें, नीचे दिया है सूत्र में, 6 नंबर का नया है समविरूढ़, 2 नंबर का फुटनोट है नीचे, समविरूढ़। ये क्या कहता है, कुछ बातें ऐसी होती है जो बातें किसी बात के अर्थ में रूढ़ हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है, फेमस हो जाती है, उन बातों को उसी अर्थ में समझना चाहिए। क्या कहा, समविरूढ़, जो जिस अर्थ में रूढ़ हो गया हो उसका वही अर्थ समझो। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं, कभी कभी हंसी मजाक में वहां इंडिया में तो ऐसा बहुत चलता है कि कहां गया है वो, बोले पाकिस्तान गया है, आप लोग भी समझते हैं पाकिस्तान, माने प्रयोग है, शौचालय के अर्थ में पाकिस्तान रूढ़ हो गया। ऐसे शब्दों के प्रयोग रूढ़ हो जाते हैं। जैसे हमने कहा केवल ज्ञान, अभी पढ़ रहे थे ना अपन केवल ज्ञान। जब हम केवल ज्ञान पढ़े, जैन धर्म के जैन शास्त्रों के प्रयोगों में कहीं भी केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग मिले तो आप क्या समझना, ओनली नॉलेज? नहीं नहीं नहीं, होल नॉलेज। केवल ज्ञान मतलब क्या है? केवल ज्ञान शब्द को किसी भी, यहां से बाहर निकलकर किसी भी व्यक्ति से पूछो केवल ज्ञान क्या मतलब होता है, ओनली नॉलेज। बट हमारे यहां शास्त्रों में केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग किस अर्थ में रूढ़ है? टोटल नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान, उसका नाम केवल ज्ञान है। ये समभी रूढ़ नये। और लास्ट है एवं भूत नये। ये एवं भूत नये क्या काम करता है? एवं भूत नये ये कहता है जो व्यक्ति या जो वस्तु जिस समय जिस काम को कर रहे हो, जिससे परिणमित हो रहे हो, उसे उसी नाम से पुकारो। रिक्शा चलाते हुए व्यक्ति को कह दो ए रिक्शा, कह दिया उसने प्रयोग है, रिक्शा कह दिया और वो रुक भी गया। अब हमने रिक्शे को पुकारा था या रिक्शे वाले को? लेकिन रिक्शे वाले को रिक्शा कह दिया आपने, ऑटो वाले को ऑटो कह दिया आपने। कह सकते हैं भाई साहब ऐसे ही प्रयोग है। कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, धोती दुपट्टा पहना हुआ है, सामग्री वगैरह लगा रहा है, आप क्या कहेंगे? ए पुजारी जी, पुजारी जी थोड़ा सा अर्घ दे देना। वकील हो, गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर है, जो व्यक्ति जिस समय जो काम कर रहा है उसे उस रूप देखना, ये एवं भूत नये का काम है। सौदर में इंद्र भी जिस समय पूजा करता है उस समय पुजारी है, जिस समय भक्ति करता है उस समय भक्त है, जिस समय हम प्रवचन करते हैं उस समय प्रवचनकार है, वक्ता है, जिस समय हम सुनते हैं उस समय श्रोता है। इस तरह के प्रयोग एवं भूत नये के प्रयोग हैं। दो वाक्य, दो चार वाक्य और कहना चाहता हूँ इस संदर्भ में, सातों नयों के संदर्भ में। नये गम नये, संकल्प ग्राही नये है, मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं ऐसा संकल्प, ये नये गम नये है। संकल्प को ग्रहण कर रहा है ना, संग्रह नये, अभेद अखंड आत्मा की चर्चा करे वो संग्रह नये, और गुण भेदों से वस्तु स्वरूप को बतलाए वो व्यवहार नये, और अपनी वर्तमान पर्याय की खबर हो सिद्ध समान जानते हुए भी ये ऋजु सूत्र नये। और शब्द नये कहता है भाषा को संभाल करके बोलना। समझी रूढ़ में कहता है कि काम जो आपने किया है वो काम ऐसा करो कि आपका नाम परमात्मा के रूप में रूढ़ हो जाए। जब आप सच रूप में अनंत गुण और अनंत धर्मों रूप से परिणमित होंगे तो परमात्मा बन जाएंगे। इस तरह ये सत्वार्थ सूत्र का ये पहला अध्याय जिसके ये सब सूत्र थे, इन सब की चर्चा हमने अपेक्षित विस्तार से यहाँ की है। और आगामी अवसरों पर जब कभी भी अवसर मिलेगा तो हम दूसरे अध्याय की चर्चा भविष्य में करेंगे। जैन सेंटर ने यहाँ बुलाया, जैन सेंटर का बहुत बहुत आभार। और बीटी शाह परिवार जिनके हार्दिक आमंत्रण पर और जिनके सहयोग से हम यहाँ आए हैं उनका भी खूब खूब आभार। वाणी से शब्दों से यदि कुछ गलत कहा गया हो तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ। कुछ भी बात पसंद नहीं आई हो आप छोड़ देना, दो मिनट बैठा हूँ अभी यहीं पर, ठीक है? और जो बात पसंद आई हो उसे घर ले जाना औरों को बतलाना। जय जय।